मैं विवेकानंद बी ए दिवस आप लोगों के लिए समाजतात्व पेपर फोर्थ यानी भारतीय समाज की गत्यात्मकता के एक चैप्टर सांप्रदायिकता को रिकॉर्ड करने जा रहा हूं और उसमें कहीं थोड़ी बहुत भूल चूक होती है तो उसके लिए क्षमा करें। इससे संबंधित क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा इसके दुष्परिणामों पर चर्चा करें। उत्तर, सांप्रदायिकता स्वतंत्र भारत में भी देश की एकता और अखंडता के लिए न सिर्फ संकट बनी हुई है बल्कि यह उत्तरोत्तर गंभीर होती जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक विकास व्यवस्था के व्यवहारिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी आंतरिक चुनौती है। सांप्रदायिकता के अस्तित्व को स्वीकार करने का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष भारत के अस्तित्व को नकार देना, जिसको कि हमारे संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सांप्रदायिकता के ही आड़ में विभाजनकारी प्रवृत्ति राष्ट्र एवं समाज के लिए सबसे शक्तिशाली और वास्तविक खतरा है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि औद्योगिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास से समाज में धर्मनिरपेक्ष शक्तियां अधिक सशक्त होंगी और धार्मिक कट्टरता में कमी आती है, परंतु यह विचारधारा भी निराधार साबित हुई क्योंकि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सांप्रदायिक शक्तियां कमजोर होने के बजाय और अधिक बलवती होती गई हैं। वर्तमान भारत के संदर्भ में सांप्रदायिकता को एक ऐसी समस्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच पारस्परिक संदेह और कटुता के कारण हिंसक संघर्षों को जन्म देती है। सांप्रदायिकता एक संघर्षात्मक परिस्थिति की ओर संकेत करती है जिसकी उत्पत्ति विभिन्न संप्रदायों के पूर्वाग्रहों, पक्षपातपूर्ण व्यवहारों और भ्रामक प्रसार द्वारा होती है। यद्यपि भारत विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों संप्रदायों का देश है, फिर भी सभी लोग सांप्रदायिकता का अर्थ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता से ही लगाते हैं, जो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तात्कालिक समय में सांप्रदायिकता दो विशिष्ट कारणों से खतरनाक आयाम ग्रहण करती जा रही है। पहला, सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति शहरों की दीवारों को तोड़कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के सौहार्दपूर्ण वातावरण में तेजी से फैल रही है। दूसरा, इसने क्रमशः जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जैसे राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद। इससे पहले कि हम सांप्रदायिकता के कारणों और दुष्परिणामों की विवेचना करें, सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट करना जरूरी है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो हमें यह बताती है कि समाज विभिन्न धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है और जिनके स्वार्थ एक दूसरे से भिन्न हैं और कभी कभी उनमें पारस्परिक विरोध भी होता है। जब एक समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे समुदाय के सदस्यों और धर्मों के विरुद्ध प्रतिरोध करते हैं अथवा उनके हितों को क्षति पहुंचाते हैं तो उन्हें सांप्रदायिक और विरोध करने की प्रक्रिया को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह प्रक्रिया हिंसक अथवा शांतिपूर्ण दोनों हो सकती है। आमतौर पर हिंसक प्रतिरोध को ही सांप्रदायिकता कहते हैं, जिसमें लूटमार, असहाय और निर्बल व्यक्तियों के घरों और दुकानों को आग लगाना, उनके स्त्रियों की इज्जत से खिलवाड़ करना और आदमी, औरत और बच्चों को जान से मार देना इत्यादि क्रियाएं शामिल होती हैं। टीके उमन ने सांप्रदायिकता के 6 आयाम बतलाए हैं। आत्मसातीकरण, ऐसी सांप्रदायिकता जिसमें छोटे धार्मिक समूहों को बड़े धार्मिक समूहों में समावेश कर लिया जाता है। कल्याणकारी, इस सांप्रदायिकता का लक्ष्य किसी विशेष समुदाय का कल्याण करना है। पलायनवादी, यह वह सांप्रदायिकता है जिसमें एक धार्मिक समुदाय अपने को राजनीति से दूर रखता है, जैसे बहाई समुदाय। प्रतिशोधात्मक संप्रदायवाद, यह सांप्रदायिकता दूसरे धार्मिक समुदायों के सदस्यों को हानि और चोट पहुंचाने का प्रयत्न करती है। अलगाववादी, इस तरह की सांप्रदायिकता में एक धार्मिक समुदाय अपनी संस्कृति की विशेषता को बनाए रखने के लिए एक अलग क्षेत्र की मांग करता है, जैसे नागा। पार्थक्यवादी, इस सांप्रदायिकता में एक धार्मिक समुदाय अपनी अलग राजनीतिक पहचान के लिए एक अलग राज्य की मांग करता है, जैसे खालिस्तान। उपरोक्त 6 सांप्रदायिकता में निचले 3 ही समस्याएं खड़ी करते हैं और जिनके कारण आंदोलन, सांप्रदायिक झगड़े और बगावत उत्पन्न होते हैं। सांप्रदायिकता के संबंध में स्मिथ का कहना है कि एक व्यक्ति अथवा समूह जो अपनी धार्मिक अथवा भाषाभाषी समूह को एक ऐसी पृथक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से अलग होते हैं और जो अक्सर विरोधी भी हो सकते हैं, उसे ही सांप्रदायिक कहते हैं। सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हुए कृष्ण दत्त भट्ट जी कहते हैं कि मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा मत ही सबसे अच्छा है, इसी का महत्व सर्वोपरि है, अन्य संप्रदाय हेय हैं, इन्हें या तो पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए या वो रहें भी तो मेरे अधीन होकर रहें, मेरी मर्जी पर आश्रित हों, मेरे आदेशों का पालन करें। इस तरह की भावना ही सांप्रदायिकता है। इसी प्रकार सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हुए उन्होंने एक जगह और कहा है कि अन्य समुदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमणकर्ता की भावना ही सांप्रदायिकता है। वेस्टर्न हाउस ऑफ डिक्शनरी ने सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समस्त समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हुए हम यह कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म अथवा धार्मिक समुदाय की वह उग्र भावना है जिसके अंतर्गत दूसरे धर्मों के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया जाता है, दूसरे धर्मों को तिरस्कार की भावना से देखा जाता है, धार्मिक कट्टरता एवं धार्मिक विश्वास, अनुकूलन और समझौते का कोई स्थान न होना, काल्पनिक व वास्तविक भय, अन्य धार्मिक समूहों को दबाना तथा उनका तिरस्कार करना ही सांप्रदायिकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता सांप्रदायिक मस्तिष्क की उपज है। यह धार्मिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक अंधभक्ति से जुड़ी है। इससे प्रेरित व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसका मत और विश्वास ही सर्वोपरि है, दूसरे को तुच्छ समझकर उसे समाप्त करने की बात सोचने लगता है। उनकी इस सोच के पीछे इस तरह की भय और आशंका होती है कि उक्त संप्रदाय हमारी मूल्यों और संस्कृति को नष्ट कर देगा। यह भय और आशंका ही उसे दूसरे से संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान समय में सांप्रदायिकता का आधार सिर्फ धर्म ही नहीं रह गया है, बल्कि उसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ध्येय भी जुड़ गए हैं। यह प्रवृत्ति स्वार्थपूर्णता के लिए धर्म का सहारा लेती है, जिससे तनाव बढ़ता है। सांप्रदायिकता के कारण। सांप्रदायिकता संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है, अथवा वे कौन से तत्व हैं जो सांप्रदायिकता की अग्नि को हवा देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को अपना आधार बनाया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के पीछे किन कारणों का हाथ है। पहला, मार्क्सवादी विचारधारा का कहना है कि सांप्रदायिकता की उत्पत्ति आर्थिक वंचन और बाजार की ताकतों पर एकाधिकार नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए एक धनवान और निर्धन के बीच संघर्ष से होती है। कुछ राजनीतिक इसे सत्ता का संघर्ष मानते हैं, जबकि समाजशास्त्रियों की दृष्टि में सांप्रदायिकता सामाजिक तनाव और सापेक्षिक वंचना के कारण उत्पन्न घटना है। धार्मिक विशेषज्ञों की इस दृष्टि में सांप्रदायिकता हिंसक कट्टरपंथियों और अनुसारकों की शक्ति का प्रतीक है। इनमें से किसी एक को हम सांप्रदायिकता का कारण नहीं मान सकते, बल्कि सच्चाई तो यह है कि ये सभी कारक सांप्रदायिकता के उत्पत्ति में सहायक हो सकते हैं। बहुकारक उपागम में सांप्रदायिकता के 10 प्रमुख कारण बतलाए गए हैं। पहला, सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में 3 तत्व तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला, सामाजिक परंपराएं। दूसरा, जाति एवं वर्ग अहम। तीसरा, असमानता और धर्म पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण। दूसरा, धार्मिक कारक। धार्मिक कारकों में इन तत्वों का सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला, धार्मिक नियमाचारों और धर्म निरपेक्ष मूल्यों में गिरावट। दूसरा, संकीर्ण और मतांध धार्मिक मूल्य। तीसरा, राजनीतिक लाभों के लिए धर्म का उपयोग। चौथा, धार्मिक नेताओं की सांप्रदायिक विचारधारा। तीसरा, राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में इन तत्वों को सांप्रदायिकता के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला, धर्म पर आधारित राजनीति। दूसरा, धर्म पर आधारित राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा, धर्म राजनीतिक हस्तक्षेप। चौथा, सांप्रदायिक हिंसा का राजनीतिक औचित्य। पांचवा, राजनीतिक नेतृत्व की असफलता। चौथा, आर्थिक कारक। निम्न आर्थिक कारकों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में योगदान दिया है। पहला, आर्थिक शोषण और पक्षपात। दूसरा, असंतुलित आर्थिक विकास। तीसरा, प्रतिस्पर्धा का बाजार। चौथा, अप्रसरणशील आर्थिक व्यवस्था। पांचवा, श्रमिकों का विस्थापन और असमावेशन। छठवा, गल्फ से आए हुए पैसे का प्रभाव। पांचवा कानूनी कारक। सांप्रदायिकता में सहायक निम्न कानूनी कारकों को शामिल किया जा सकता है। पहला, समान कानूनी संहिता। दूसरा, संविधान में कुछ समुदायों के लिए विशेष रियायतें। तीसरा, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा। चौथा, आरक्षण नीति। पांचवा, विभिन्न समुदायों के लिए विशेष कानून। छठवां, मनोवैज्ञानिक कारक। निश्चय ही मनोवैज्ञानिक कारक सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी हैं। मनोवैज्ञानिक कारकों में निम्न तथ्यों को शामिल किया जा सकता है। पहला, सामाजिक पूर्वाग्रह। दूसरा, रूढ़िबद्ध अभिवृत्तियाँ। तीसरा, अंधविश्वास। चौथा, दूसरे धर्मों एवं संप्रदायों के बीच विद्वेष और भाव शून्यता। पांचवा, अफवाहें। छठवां, भय का मानस। सातवां, जन्म संपर्क के साधनों द्वारा गलत जानकारी। सातवां, प्रशासनिक कारक। प्रशासनिक कारकों में निम्न को शामिल किया जा सकता है। पहला, पुलिस और दूसरी प्रशासनिक इकाइयों में समन्वय का अभाव। दूसरा, सुसज्जित और कुप्रशिक्षित पुलिस अधिकारी। तीसरा, गुप्तचर विभाग की अकुशल कार्यप्रणाली। चौथा, पक्षपाती पुलिस के सिपाही। पांचवा, पुलिस की ज्यादतियां और निष्क्रियता, अकुशल पीएससी। सातवां, समय पर पहुंचने का अभाव। आठवां, ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक जो कि सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है निम्न है। पहला, विदेशी आक्रमण। दूसरा, धार्मिक संस्थाओं की क्षति। तीसरा, धर्म परिवर्तन के लिए प्रयत्न। चौथा, औपनिवेशिक शासकों की फूट डालो और राज करो की नीति। पांचवा, विभाजन का मानसिक आघात। छठवा, पिछले सांप्रदायिक दंगे। और सातवा, मंदिर और मस्जिद के पुराने झगड़े। नौवा, स्थानीय कारक। कभी कभी स्थानीय कारक भी सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न करने में विशेष भूमिका का निर्वाह करते हैं। स्थानीय कारकों में निम्न तत्व उल्लेखनीय है। पहला, धार्मिक जुलूस। दूसरा, नारेबाजी अफवाह है। तीसरा, जमीन के झगड़े। चौथा, स्थानीय असामाजिक तत्व। पांचवा, गुटों में प्रतिद्वंदिता। दसवां, अंतर्राष्ट्रीय कारक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देश अथवा संस्थाएं ऐसे हैं जो किसी देश के शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। वे अपने निम्न कृत्यों द्वारा सामाजिक सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। पहला, दूसरे देशों को अपनी प्रशिक्षित लड़ाकुओं और वित्तीय सहायता देकर। दूसरा, अबाध रूप से हथियारों की सप्लाई कर। तीसरा, दूसरे देशों में व्याप्त सामाजिक सांप्रदायिक संगठन को पर्याप्त सहयोग देकर। इस आधार पर कि सांप्रदायिकता के कारकों को कुछ छोटे और बड़े कारकों में भेद किया जा सके, सिरिल बर्ट ने इन कारकों को चार उपसमूहों में बांटा है। पहला, अधिकतम अस्पष्ट। दूसरा, प्रमुख सहयोगी। तीसरा, लघु गंभीर। चौथा, ऊपरी तौर से निष्क्रिय। विशेष रूप से ये कारक हैं सांप्रदायिक राजनीतिक एवं धार्मिक कट्टरवादिता कट्टरवादियों की राजनीतिज्ञों का समर्थन। दूसरा, पूर्वाग्रह। तीसरा, सांप्रदायिक संगठनों का विकास। चौथा, धर्म परिवर्तन। अगर हम समग्र रूप से विचार करें तो सांप्रदायिकता के कुछ प्रमुख कारक निम्न रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, पुलिस की भूमिका। सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस का प्रमुख कार्य होता है दंगा करने वालों को गिरफ्तार करना, दंगाइयों को जो एक स्थान पर जमा हो गए हों खदेड़ना, गलत अफवाहों को फैलने से रोकना। परंतु अधिकांशतः यह देखने में आता है कि अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी कर्मकांडीय ही होते हैं, राजनीतिक निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। ऐसे में पुलिस को अपने भूमिकाएं निभाने में अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण सांप्रदायिकता रोकने संबंधी कार्यों का निर्वाह करने में पुलिस असमर्थ हो जाती है। दूसरा, मीडिया की भूमिका। प्रेस और संचार के माध्यम भी कभी कभी अपने तरीके से यानी गलत घटनाओं को गलत तरीके से पेश घटनाओं को गलत तरीके से अथवा अयथार्थ तरीके से पेश कर सांप्रदायिकता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। जैसे अहमदाबाद में 1976 में भड़के दंगे का प्रमुख कारण यह था कि केवल सेवक नामक पत्रिका ने यह खबर छापी कि मुसलमानों ने कुछ हिंदू स्त्रियों को नंगा करके घुमाया है और बलात्कार किया है। फिर क्या था, दंगा भड़क उठा, जबकि एक ही दिन बाद इस घटना को निराधार साबित कर दिया गया, परंतु दंगा तो भड़क उठा था। तीसरा, राजनीतिक स्वार्थ। पिछले 53 वर्षों में देश में हुए बड़े सांप्रदायिक दंगों के अध्ययन ने यह उद्घाटित किया है कि सांप्रदायिक दंगों को धर्म की तुलना में राजनीति से अधिक प्रेरित होते हैं। जैसा कि मदान कमीशन का कहना है, कुछ राजनीतिक वर्ग हर घटना को सांप्रदायिक रूप इसलिए देते हैं ताकि जनता के सामने अपने आप को धर्म और अधिकारों के हिमायती के रूप में प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि जिस बाटों और राजकरों की नीति का प्रयोग कर अंग्रेजों ने हम पर 200 सालों तक राज किया, ठीक उसी नीति का प्रयोग हमारे ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। इनकी इन नीति ने ही हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट कर रख दिया है। चौथा, भौगोलिक कारक। अनुभव यह बताते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां भी सांप्रदायिकता की घटना को प्रमुख रूप से प्रभावित करती हैं। प्रायः हम यह देखते हैं कि जहां एक ही क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सिख तथा विभिन्न संप्रदायों की बस्तियां होती हैं वहां पर उनके बीच हम की भावना पैदा हो जाती है तथा सांप्रदायिक तनाव कम पाया जाता है, परंतु जहां पर उनकी बस्तियां अलग अलग होती हैं वहां सांप्रदायिकता अधिक देखने को मिलती है। उदाहरण स्वरूप 1950 के बाद देश में जितने भी दंगे हुए हैं उनमें गाँवों का हिस्सा सिर्फ 3.5% है जबकि शहरी क्षेत्रों का हिस्सा 94.03% है। असामाजिक तत्व। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में समाज विरोधी तत्वों एवं निहित स्वार्थ वालों का भी बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होता है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने असामाजिक करतूतों द्वारा तनाव एवं संघर्ष की स्थिति इसलिए उत्पन्न करते हैं ताकि लूटपाट तथा हवस मिटाने का अवसर मिल सके तथा अपने व्यक्तिगत झगड़ों का बदला ले सके। सांप्रदायिक संगठन। आज भी हमारे देश में ऐसे सांप्रदायिक संगठनों का अस्तित्व विद्यमान है जिनका गठन ही धार्मिकता के आधार पर हुआ है। एक तरफ हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, शिवसेना जैसे ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म का संरक्षक बताते हैं, अपने मतावलंबियों में सिरसूल बांटते हैं, धर्म योद्धाओं की भर्ती करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, मजलिसे इत्तिहादुल मुस्लिमीन, मजलिसे मुसावरात, सीमी कुछ ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को मुस्लिमों का समर्थक बताते हैं, बात बात पर जिहाद का नारा देते हैं। तो क्या ऐसे देश में जहां ऐसे सांप्रदायिक संगठन विद्यमान हो जो समय समय पर सांप्रदायिकता की अग्नि को हवा देते रहते हों, सांप्रदायिक शांति की आशा की जा सकती है? ऐतिहासिक कारक। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब मुसलमान बाहर से आए तो उन्होंने तलवार के बल पर हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया, हिंदुओं के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, सांप्रदायिकता की अग्नि को प्रज्वलित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का विवाद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और उसके समीप में किया गया परिवर्तन, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके बराबर में स्थित मस्जिद का विवाद। मनोवैज्ञानिक कारक। सांप्रदायिकता का एक प्रमुख कारण मनोवैज्ञानिक भी है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों में ही एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिकार, विरोध एवं पृथक्करण के मनोभाव पाए जाते हैं। इस प्रकार दोनों संप्रदायों के पारस्परिक अविश्वास ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक भिन्नता। सांप्रदायिकता को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण कारक हिंदू एवं मुसलमानों की सांस्कृतिक भिन्नता है। दोनों में रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावे, धर्म एवं विचारधारा में बहुत अंतर है। यह सांस्कृतिक भेद मनमुटाव एवं तनाव पैदा करता है। सामाजिक कारक। कुछ सामाजिक कारक जैसे मुसलमानों द्वारा परिवार नियोजन के उपायों को नहीं अपनाने के कारण भी हिंदुओं में संदेह और दुर्भावना पैदा करते हैं। 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में पुणे और सालापुर में पर्चे बांटे जिसमें मुसलमानों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करने की और बहुविवाह का पालन करने इस उद्देश्य से करने की कि इस जिससे उनकी जनसंख्या में कथित रूप से वृद्धि हो जाए और वे भारत में मुस्लिम राज्य बना ले की निंदा की गई। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता सदैव से ही राष्ट्रीय एकता और बंधुता के मार्ग में बाधक रही है। सांप्रदायिकता में व्याप्त संकुचित विचारों ने कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय एकता को विघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण हमारे राष्ट्र के अंदर मौजूद विभिन्न संप्रदायों और धार्मिक समूहों के बीच कटुता और वैमनस्यता की भावना बढ़ती जा रही है। दूसरा, सांप्रदायिकता के ही कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच अविश्वास, घृणा एवं विद्वेष की भावना पैदा होती है जिसकी परिणति अंततः संघर्ष अथवा सांप्रदायिक दंगों के रूप में होती है। प्रोफेसर वार्ष्णेय के अनुसार 1950 से 1995 के बीच भारत में 1238 दंगे हुए, जिसमें 7173 लोगों की मृत्यु हो गई। तीसरा, जब भी सामाजिक दंगे भड़कते हैं तो सर्वप्रथम दंगाइयों के निशाने पर विरोधी संप्रदाय के व्यक्तियों की संपत्तियां और सार्वजनिक संपत्तियां ही होती हैं। मकान, दुकानें, सरकारी कार्यालय, स्कूल, भवन, रेल, डाकघर इत्यादि को जला दिया जाता है। इससे सार्वजनिक तथा निजी धन की बर्बादी ही होती है। उदाहरण स्वरूप, मेरठ मई 1987 में हुए दंगे में करीब 20 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। तीसरा, शायद इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि सांप्रदायिकता के कारण प्राण हानि भी अत्यधिक होती है। शायद ही ऐसा कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जान न गई हो। चौथा, सांप्रदायिकता ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है या उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है जिससे कि देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पांचवा, भारत एक बहुत सांप्रदायिकवादी देश है। इसमें अनेक अल्पसंख्यक समूह निवास करते हैं। इन्हीं अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों के बीच जो सांप्रदायिक झगड़े व तनाव उत्पन्न होते हैं उनसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। विनोबा भावे ने कहा है कि हमारे यहाँ जो मुसलमान, ईसाई वगैरह अल्पसंख्यक हैं उनका उत्तम रक्षण होना चाहिए, प्रेम से उनका बचाव करना चाहिए। अगर यह वृत्ति आप में नहीं है तो आप लाख कोशिश करें, आपको आज़ादी नहीं रहेगी। छठवा, सामाजिक सांस्कृतिक विघटन। सांप्रदायिकता सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन पैदा करने वाला एक प्रमुख कारक है। सांप्रदायिकता के कारण विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों, संस्कृतियों के लोगों के बीच मेल मिलाप एवं सामाजिक संबंध बनना अवरुद्ध हो जाता है, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और पृथकता के भाव पैदा होने लगते हैं। आतंकवाद को बढ़ावा। सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब कभी एक समूह अथवा संप्रदाय के विरुद्ध शोषण व अत्याचार अपनी हदें पार करने लगते हैं तो मजबूरन वह समूह आतंक का रास्ता अख्तियार करता है। आठवां, महिलाओं की बदतर स्थिति। महिलाओं और लड़कियों के लिए सांप्रदायिकता एक अभिशाप से कम नहीं है। सांप्रदायिक दंगों के समय दंगाइयों के निशाने पर अगर सबसे प्रमुख कोई वस्तु होती है तो वह है विरोधी संप्रदाय की महिलाएं, लड़कियां। फिर हवानियत और बहसीपन का एक ऐसा नंगा खेल खेला जाता है जो स्त्रियों को जीते जी ही मार देता है। नौवां, अधिक आर्थिक विकास में बाधक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांप्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। दंगों के कारण कारखाने, मिलों में उत्पादन कार्य बंद हो जाते हैं। पूंजी निवेशक ऐसे क्षेत्रों में पूंजी भी नहीं निवेश करते जहां अक्सर दंगे होते रहते हैं। इससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निश्चय ही सांप्रदायिकता मानवता के लिए गंभीर अभिशाप है और भारत जैसे देश जहां एक ही साथ भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं रहे हैं के लिए तो यह और भी घातक है। अगर हम भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं, अगर हम भारत को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर कुछ सम्मान एवं प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं तो मानवता की भयंकर शत्रु सांप्रदायिकता को मिटाना ही होगा। एक महान स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए हैं। पहला, सर्वत्र इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाए कि सब धर्मों के लोग मिलकर रोज मौन प्रार्थना करें। दूसरा, शिक्षण में आध्यात्मिक मूल्यों को समावेश किया जाए। सांप्रदायिकता एवं मजहबी क्रियाकर्म भिन्न चीजें हैं। तीसरा, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा न की जाए। सारा कार्य ऐसे ढंग से हो कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक होने का अफसोस ही न रहे। चौथा, विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों में सब धर्मों के लोगों को सम्मिलित किया जाए। पांचवा, धर्म विशेष से संबंध न रखने वाले व्यक्तिगत और सार्वजनिक उत्सव प्रसंगों में सब लोग मिलजुल कर सहयोग करें। छठवा, विभिन्न धर्म वालों को, विचार वालों को, विशेषतः मुसलमानों को विचार गोष्ठियां चलानी चाहिए जिनमें विभिन्न धर्मों के उसूलों का अध्ययन चिंतन हो। सातवां, ग्रामदान तथा शांति सेना जैसे विविध कार्यक्रम बनाए जाएं और वे सारे देश को बिना किसी भेदभाव के फैलाए जाएं। कुछ निम्न उपायों को अपनाकर भी सांप्रदायिकता को काफी हद तक रोका जा सकता है। पहला,
सरकार को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य न होने पाए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता हो। दूसरा, सरकार को सदा ही ऐसे कानूनों का ही निर्माण करना चाहिए जैसे किसी भी प्रकार की जाति, लिंग, धर्म, भाषा एवं संप्रदाय का धर्म भेदभाव न हो। सरकार को ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे लोगों में एकता और बंधुत्व की भावना का विकास हो। आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वह बढ़ता हुआ राजनीतिक का अपराधीकरण अथवा अपराधी का राजनीतिकरण। न्यायपालिका को इस संबंध में कठोर नियम बनाने चाहिए जिससे राजनीति में अपराधियों को बढ़ता हुआ वर्चस्व कम हो। सरकार के द्वारा मीडिया पर इस प्रकार का दबाव बनाया जाए ताकि वह ऐसा कार्य न करे जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता हो। पुलिस विभाग को भी इस तरह से सुसंगठित किया जाए कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे के शुरुआत होने के तुरंत पश्चात ही उस पर रोक लगाया जा सके अथवा होने ही न दिया जाए। इस प्रकार से ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर कहीं उच्चारण में थोड़ा बहुत गलत हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करें।